Market Mantra. Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also take calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on these numbers, 2331-4444 and 2331-0481. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. आज सोमवार है श्रोताओं और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार जगत हो, अर्थव्यवस्था हो या शेयर बाजार से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो, ये आप सीधा हमें इन नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444 और 2331-0481. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं और मोबाइल से फोन करने वाले जो श्रोता हैं, वो इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन.
धन्यवाद प्राची, धन्यवाद अनुभव और आकाशवाणी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन.
चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने हेडलाइंस.
थैंक यू प्राची. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड लास्ट सेशन ऑफ फिस्कल ईयर 2026 विद लॉसेस. सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 1600 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस बिलो 22,350. इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट राइजेस टू 5.2% इन फेब्रुवरी दिस ईयर. And global crude oil prices gain by around 2%.
घरेलू शेयर बाजार वित्त वर्ष 2026 के अंतिम सत्र में 2% से अधिक गिरे. सेंसेक्स 1600 अंकों से ज्यादा फिसला, वहीं निफ्टी 22,350 के नीचे बंद हुआ. इस वर्ष फरवरी में भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 5.2% दर्ज किया गया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 2% की वृद्धि हुई.
And an important announcement before we begin the program. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prachi.
आइए श्रोताओं, चलते हैं, जानते हैं कि आज हमारे प्रमुख सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगातार दूसरे सत्र में 2% से अधिक गिरे. सेंसेक्स 1636 अंक गिरकर 71,948 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 488 अंक गिरकर 22,331 पर आ गया. वित्त वर्ष 2026 के अंतिम सत्र में बाजार के सभी क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव रहा और गिरावट देखी गई.
बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेज एंडेड द लास्ट सेशन ऑफ द फिस्कल ईयर 2026 विद स्टीप लॉसेस ऑफ मोर देन 2%. The Sensex tumbled 1,636 points to close at 71,948. The Nifty shed 488 points to settle at 22,331. Both indices witnessed a broad-based sell-off across sectors and closed lower for a second straight session.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. प्रमुख रूप से गिरने वाले शेयरों में सबसे पहला नाम बजाज फाइनेंस 5.1%, एसबीआई 3.9% से अधिक और इंडिगो 3.8% गिरा. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयर्स में टेक महिंद्रा 1.6% से अधिक और पावर ग्रिड में लगभग 0.3% की वृद्धि हुई.
All 25 sectoral indices at the BSE ended in the negative territory. Among the top underperformers, PSU Bank tanked 4.6%, Mid small private banks slipped almost 4% and financial services fell by nearly 3.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,563 companies declined, shares of 876 companies advanced and shares of 154 companies remained unchanged.
और अनुभा, हमारे पहले कॉलर जो है उन्होंने दस्तक दे दी है, ये प्रयागराज से है, इनका नाम है सौरभ. सौरभ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
जी, मैं स्पष्ट से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान सिनेरियो में किन सेक्टर में एक आम निवेशक निवेश कर सकता है, क्योंकि स्टॉक तो बहुत गिरे हुए हैं.
जी हाँ सौरभ, वाकई में मार्केट बहुत प्रेशर में है इस समय, पर आप देखिए कि जो गिरे हुए हैं उसमें से बहुत सारे शेयर्स सौरभ इस समय बड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ गए हैं. उनकी पी रेशियो बड़ी अट्रैक्टिव हो गई है, उनकी बुक वैल्यू बड़ी अट्रैक्टिव हो गई है. उनकी आप डेमा देखें, 200 डेमा, 50 डेमा से भी नीचे कुछ एक स्टॉक्स चले गए और बहुत सॉलिड. तो मुझे लग रहा है आपने सेक्टर्स का पूछा, तो डिफेंस सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूँ, एफएमसीजी सेक्टर पे मैं बहुत बुलिश हूँ, डिफेंस, एफएमसीजी और एनर्जी सेक्टर पे, ये तीन सेक्टर्स के मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि इस समय अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग हो रही है तो बहुत ज्यादा हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते. तो अभी आप फिलहाल तीन ही सेक्टर्स को दिमाग में रखें, और भी हैं मेरे जहन में. और मैं सलाह ये दूंगा अनुभा और प्राची की इजाजत से कि थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ पैसा ना लगाएं. जब जब मार्केट करेक्ट हो, बहुत मेहनत लगती है बार बार लेने में. किसी ने मुझसे, मैंने किसी से कहा, उसने मेरे से कहा कि आए बार बार लेना, ये एक बार लेके खत्म करो काम को. मैंने कहा खत्म करो काम को, फिर खत्म हो जाते हैं पैसे भी कई बार. तो बेटर है आप थोड़ा थोड़ा करके लें और जब जब मार्केट करेक्ट हो तब लें.
यानी अलग अलग लेवल पर एंट्रीज.
जी बिल्कुल बिल्कुल.
लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टोरी प्राची.
बिल्कुल श्रोताओं, आइए जाने रुपए का हाल. आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 94.81 रुपए पर स्थिर रहा. डॉलर सूचकांक, जो छह अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 100.25 पर कारोबार कर रहा था.
Meanwhile, Finance Minister Nirmala Sitharaman today strongly defended the strength of the Indian economy in Parliament, saying the rupee's value is market-driven and India's macroeconomic fundamentals remain robust despite global uncertainties. Replying during the question hour in the Lok Sabha over the rupee's depreciation, the Finance Minister said the fundamentals of the Indian economy are strong and currencies across the world are witnessing volatility due to global uncertainty. The minister highlighted key economic indicators, noting that inflation has dropped to low levels, GDP growth remains above 7% and the current account deficit is under 1%. The finance minister added that global volatility, including higher dollar outflows, is affecting currencies worldwide and India is not alone in facing exchange rate pressures. Mr. Kohli, of course, the finance minister has made a very valid point in the Parliament, saying that, you know, it's not just the Indian rupee, it's happening across the board. So I want your comment on that, and also I want you to, you know, explain for our listeners that the RBI, the central bank, late on Friday, it asked banks to cap their net open rupee positions in the forex market at $100 million by the end of each business day. What exactly does it mean, and how is it going to impact, or how is it impacting the rupee?
Well, I hate being too technical at times, because sometimes the listeners are not able to connect, you know, they're not able to understand. But sometimes, you know, sometimes are exceptions. And you'll have to allow me to speak a bit technical.
Yes, sure.
There is a difference between dollar becoming strong and dollar becoming expensive. Mm-hmm. Now, dollar becoming strong means that the intrinsic value of US dollar is becoming expensive. That cannot be the case because US economy is not in a good shape. And this is the country which has gone to war at this point of time. So how can you expect currency of a country going to war become strong for that matter? It is becoming expensive simply because of crude oil, because crude oil 60-70% around the world is traded in US dollars. So we need more dollars now. Plus the FII and FPI selling has been relentless. Even today, the numbers must be around the corner. They must be coming. But I'm sure there's been heavy FII, FPI selling. So that is leading to demand of dollar. The demand of dollar should not be mixed up and confused as strong dollar. So it is that is the reason. And as for the net operating position square up, $100 million is the cap which has been recommended by RBI to stabilize the rupee, because these banks, they go for forward trading. They go for a lot of open positions where they take positions in the anticipation of increase in dollars. They are allowed to do so. Now they've been asked to cap it down to $100 million so that the dollar positions get squared up and some stability can be brought to rupee.
Amit from Delhi is online with us. But before we take your call, Amit, Mr. Kohli, you said that this is to stabilize the rupee. But we saw today that even today, you know, the rupee weakened past $95 per dollar for the first time. So it doesn't seem to have had much of a impact.
Well, I think if this was not the case, then maybe we could have seen 96, 97 as well. That's how you take it, because maybe the selling pressure from the FIs and FPIs was stronger.
Right.
And crude also rose. So that was dominating over the NOP, you know.
Bilkul. चर्चा को हम ऐसी इसी तरीके से शरद जी के साथ कायम रखेंगे, मगर उससे पहले आइए दिल्ली से हमारे नए कॉलर जुड़ रहे हैं. इनका नाम है अमित. अमित जी, कृपया अपना सवाल पूछिए.
हाँ, नमस्कार सभी को.
नमस्कार
कोहली सर. नमस्कार सर.
हाँ नमस्कार अमित.
आज सोमवार को आ गए हैं तो आप और खुशी हो रही है सर. आप शनिवार को आया करते
हैं
सर. हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था सर कि जैसे अभी हालिया दिनों में जो यूएस ईरान के, मैंने सुना अब्बास अराकी जो है विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं सर वार्ता के लिए, तो क्या है उनका स्टेटमेंट. और दूसरी चीज सर कि जैसे मान लीजिए ये सेटल हो जाता है और मान लीजिए कि उनके सीज फायर हो जाता है, तो फिर से दोबारा जो सप्लाई चेन हो उसको इम्प्रूव होने में, नॉर्मलाइज होने में तो कितने समय लग सकते हैं सर. धन्यवाद सर.
आपका दूसरा सवाल आर्थिक जगत से संबंधित लगता है. पहला सवाल तो आपने कहा कि वो इसकी क्या संभावना, ये तो राक्षी साहब जानते हैं या ट्रम्प साहब जानते हैं. मैं समझता हूँ उनके माइंड को पढ़ पाना इस समय दुनिया का सबसे कठिन काम है, ट्रम्प साहब के मन को पढ़ पाना. तो वो क्या उम्मीद करते हैं, हम सब भी ये प्रार्थना करते हैं, होप विश एंड प्रे के सबको सद्बुद्धि आए और ये युद्ध की शांति हो, युद्ध समाप्त हो. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बहुत हुआ है. इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर कतर में डैमेज हुआ है, कुवैत में आज सैलिनेशन प्लांट को भी डैमेज हुआ है. मुझे लगता है इसको रिपेयर करने में, मेरा अपना अंदाजा है, मैं इन देशों में गया हुआ और मैंने ये एसेट्स कुछ एक देखे हुए हैं, 2 से 5 साल तक का समय लग सकता है.
पर कह भी चुका है जो हाँ, के लिए
और पर यह है कि सप्लाई चेन को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी हो, पर हाँ कुछ डैमेज को रिपेयर करने में समय लग सकता है. पर अमित जी, आपका पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा, आपकी गैस मिलती रहेगी, आप इसकी चिंता मत करें.
जी, लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र फ्रॉम जयपुर हैज जॉइंड अस. जितेंद्र, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
हाँ सर, मेरा कोई प्रश्न तो ऐसे नहीं है. शनिवार को आप आए थे तो देखिए आपके प्रति तो हम लोग की बहुत श्रद्धा है, लेकिन शनिवार के बाद और ज्यादा बढ़ गया. किसी श्रोता ने नॉर्थ ईस्ट से पूछा था त्रिपुरा से, तो आपने बहुत अच्छे से त्रिपुरा का डिस्कशन रखा, तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ कम से कम आप आर्थिक जगत के साथ साथ पूरे भौगोलिक और राजनीतिक भी जानते हैं. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर.
धन्यवाद सर.
जी जी, जितेंद्र कृपया अपना सवाल पूछिए.
नहीं, उनका सवाल नहीं था, उन्होंने यही इतनी ही बात करनी थी. मैंने इसलिए कहा था, अनुभव और प्राची को बता दूं, उन्होंने ये कहा कि सवाल नॉर्थ ईस्ट थे. मैंने कहा आप त्रिपुरा बोलिए ना, त्रिपुरा तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, अब क्यों नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट
प्रख्यात जगह है.
हाँ, प्रख्यात जगह है, इनको हमसे अलग से हाईलाइट नहीं करना चाहिए, देश का मेन स्ट्रीम में है.
जितेंद्र, कार्यक्रम के इस तारीफ के लिए और हमारे एक्सपर्ट की तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. प्राची, अगली खबर.
आइए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ. ये खबर है एशिया और यूरोप के बाजार की. आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3%, जापान का निकेई 2.8% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% गिरा. वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स की बात करें तो ये स्थिर रहा. इसके विपरीत चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.2% से अधिक बढ़ा. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें श्रोताओं, तो यहां भी तेजी देखी गई. लंदन का फुटसी 0.9% से अधिक, फ्रांस का कैक और जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% से अधिक की बढ़त के साथ नजर आया.
Let's take the next story. India's industrial production growth as measured by the Index of Industrial Production IIP rose to 5.2% in February 2026 on an annual basis. The upwardly revised rate in January stood at 5.1%. According to the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, growth in industrial output was mainly driven by an improvement in manufacturing, which surged by 6% as compared to 5.3% in January. Meanwhile, mining activity expanded 3.1% last month, down from 4.3% in January, while electricity generation growth also eased to 2.3% from 5.1% in the same period. Charanji, what is your assessment of the, you know, we've got the IIP figures, it is 5.2% compared with 5.1% in January, and more importantly, driven mostly by improvement in manufacturing.
Well, I think India's prowess in manufacturing is emerging by the day, and we should not forget that this data is for January.
Yes.
So probably February also may be fine, but I think
Data is for February.
The February and March data, you might start seeing the impact a little bit, although not much, I would say. But a little bit impact of the war, because there is a discussion in the industry that things, some of the imported costs have gone up, input costs have gone up, raw material costs have gone up. Mm-hmm. So you might see a little bit of impact in the month of March. But I think for now, there is no doubt. I mean, we heard the finance minister speak in the parliament today that there is no doubt about India's growth. India's growth story is intact. In fact, the world is wondering, while the major part of the world is in war, India is still growing at the pace it should have been growing, 7% plus. So I think these numbers vindicate those numbers.
Sharaj ji, aapke paas wapas aayenge aur sawalon ke saath, lekin isse pehle hamare ek aur caller jud rahe hain Mumbai se, inka naam hai Gopal. Gopal ji, apna sawal poochiye.
Namaskar madam, baat ke madad se namaskar. Mere do sawal hai, ek commodity pe aur ek market pe.
Ji.
Jo ye jo market hai pichle do saal se gir rahi hai, koi Iran aur iska bahar ye bahana nahi hai. Pichle do saal se equity market dhanasan gir rahe hain, khas kar especially private companies.
Ji.
Aur is had tak gir chuki hai ki koi to 13000 ka share 6000 tak gir gaya.
जी,
तो ये कोई कंट्रोल नहीं है ऐसे भी, क्या सोया हुआ है ऐसे भी, कंपनियां तो ऐसे इन्वेस्टर तो तबाह हो जाएंगे, तो मार्केट तो पूरा तबाह हो चुका है, आगे क्या आएगा मालूम नहीं. पहला सवाल ये है. दूसरा सवाल कम्युनिटी में सिल्वर पे है सर. ये जब सिल्वर जब 4 लाख था, मैंने ये पेपर ट्रेडिंग में बाय किया, और जिस दिन बाय किया उस दिन 4,30,000 तक गया था, लेकिन उसके दो दिन के बीच में ऐसा गिरा कि मैं देखते रह गया. एक बार 20% गिरा, उसके बाद फिर और 20% गिरा, यानी कि सीधा एकदम 2,20,000 तक गिर गया दो दिन में. ये क्या, ये तो सीधा खुल्लम खुला गैम्बलिंग है सर. ये तो इन्वेस्टर तो पूरी तरह तबाह हो गए सर. सिल्वर में बोलते हैं कि जो लोकल इन्वेस्टर है 100,00,000 करोड़ उड़ गया, फॉरेन इन्वेस्टर के 3 बिलियन डॉलर उड़ गया. क्या सही है ये सब? ये
गोपाल जी, आपकी भावनाओं को सम्मान करते हैं. पहली बात तो आपको देखिए, घाटा तो हर किसी को इस प्रकार से सोचने को मजबूर करता है. आपने मार्केट फॉलिंग की 2 साल की बात करी, मेरे पास 2 साल का आंकड़ा है मेरे सामने इस समय, और 2 साल में मार्केट 23,000-24,000 के आसपास था. और मार्केट जब ये लड़ाई शुरू हुई, उससे पहले मार्केट 25,000 के आसपास घूम रहा था, 25,000-25,500 का. हम लोग निफ्टी ज्यादा ट्रैक करते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसी कोई, हाँ मार्केट थोड़ा सब्ड्यूड रहा. और गोपाल जी, ये मत भूलिए, जो लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, आज मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर बोल रहा था
जी,
वहां मैंने यही बोला कि जो इन्वेस्टर्स नए जुड़े हैं, उन्होंने कभी ऐसा दौर देखा नहीं.
बिल्कुल,
कोविड के बाद इतनी बड़ी गिरावट, तो वो तो हिल गए हैं कि तो ये मार्केट की यही मार्केट की मैं खूबी तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनका नुकसान हुआ है, पर मार्केट का नेचर ही ऐसा है. अगर गोपाल जी मार्केट एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाता रहे, तो मैं नहीं जानता आप क्या बिजनेस नौकरी करते हैं, तो आप तो खाली फिर यही करेंगे, क्योंकि आज लिया कल बेचा, परसों लिया फिर बेचा, हमेशा मुनाफे पे बेचते रहेंगे. तो मार्केट में ऐसे फेसेस आते हैं. 2008 में मैंने देखा जब लीमैन ब्रदर क्राइसिस आई, उसके पहले .com बबल आया देखा, फिर इंडिया को एक दफे सोना गिरवी रखना पड़ा था, मैंने वो दौर भी देखा. तो ये कोविड आया, कोविड में मार्केट 7,500 तक आ गया था, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ. तो मार्केट पर लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाता है, कभी इस पे विस्तार से मैं चर्चा करना चाहूंगा, समय कम होगा. आपने दूसरा सिल्वर का पूछा, देखिए आपने बोला कि मैंने पेपर ट्रेडिंग किया, और सेबी का एक आंकड़ा आया कि जो लोग भी वायदा बाजार में काम करते हैं F&O में, उनको 90% लोग उसमें पैसा गंवाते हैं. तो इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि लंबे वक्त के लिए निवेशक बनिए, ये ट्रेडिंग व्रेडिंग के चक्कर में आप ना पड़े. ट्रेडिंग ऐसा ही होता है जैसा आपके साथ हुआ, ज्यादातर ऐसे होता है अगर ये ना कहूं तो, क्योंकि कब मार्केट का कुछ पता नहीं, कब घूम जाए कब चला जाए. तो लंबे वक्त के गोपाल जी, इससे आप सीख लेते हुए, अब जो हो गया तो हो गया, पर मैं उम्मीद करता हूं लंबे वक्त में यहां से रिकवरी होगी. हो सकता है उसमें समय लग सकता है, पर इसमें से सीख लेनी चाहिए कि आगे से आप लंबे वक्त के लिए मार्केट में आइए. और शेयर मार्केट का भी जो आपका सवाल था, ये बहुत लोग, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों के दिमाग में ये बात है. मुझे लगता है जो लंबे वक्त का निवेशक है, उसको कोई चिंता करने की बात नहीं होती. ये उतार चढ़ाव हिचकोले आते रहे, रोलर कोस्टर होता है ना, एक झूला होता है, ऊपर नीचे मार्केट ऐसे ही रहता है, पर लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है. तो आप चिंता मत करिए, आपकी भावनाओं को सम्मान है, हमें पूरी सहानुभूति. आपका अगर लॉस हुआ है, हमें इस बात का खेद है, किसी का एक पैसा भी जाता है तो मार्केट मंत्रा तो लोगों को इन्वेस्टमेंट की शिक्षा देता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है. पर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया. मार्केट मंत्रा सुनते रहिए, आप रेगुलर सुनेंगे तो हो सकता है आप ऐसी बहुत सारी टिप्स आपको मिलेंगी, जो डिस्क्लेमर शुरू में दिया जाता है उसका तो जरूर ध्यान रखें, तो आप जिससे आप आगे से ही कम से कम प्रॉफिट ना हो तो लॉस आप ना करें.
जी, एक्सपर्ट की राय को सहेज करके श्रोताओं, आइए हम सब आगे बढ़ें. बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं. टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
नमस्ते मैम।
नमस्ते
मैम, मेरे मोबाइल पर मैसेज बार बार आ रहा है, बोल रहा है मानधन योजना पेंशन है, वो बोल रहा है पंजीकरण 31 मार्च तक होना चाहिए।
टिंकू जी दोबारा बताएं कौन सी योजना के बारे में आ रहा है सवाल आपके पास मैसेज?
मानधन योजना 3000 के जो है 3000 का पेंशन, वो 31 मार्च तक पंजीकरण कर बोल रहा है करने के लिए।
ठीक
है, और एक मैं योजना कर रखे है 1000 की मंथली, और एक आरडी है मेरा 1500 का रेकरिंग पॉलिसी जो आरडी बोलते हैं, और ये करना चाहते हैं पीपीएस अकाउंट
जी,
जो क्या कहता है डाक में
जी।
ठीक है, ये संतोष पॉलिसी कैसा असर जी है, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, और ये जो पंजीकरण
जी देखिए
है
टिंकू जी, मुझे लगता है ये बिहार सरकार का लॉन्च किया हुआ मानधन योजना है, जिसमें बिहार के जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ खास कैटेगरी के लिए पेंशन देने का प्रावधान है। बिल्कुल आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिलेगी। पीपीएफ आपने कहा बहुत बढ़िया है टिंकू जी, पीपीएफ इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और उसका टैक्स भी माफ है, 7% के करीब ब्याज आता है और उसको 15 साल के लिए होता है, बहुत अच्छा पॉलिसी। आरडी भी आप किए हैं वो भी बहुत अच्छा है, आपने सारा बढ़िया बढ़िया स्कीम ले रखा है, मैं सुन रहा था आपको, बहुत अच्छे से आपने सारे स्कीम्स ले रखे हैं। करिए मानधन भी करिए, जब पेंशन आए तो हमारे लिए एक लड्डू बड्डू उसमें से भेजिएगा कभी अगर मौका लगे।
आगे बढ़ते हैं,
द नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम भोपाल, शंकर इज ऑनलाइन विद अस। शंकर वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग कॉलेज।
गुड इवनिंग
सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट दिस फॉरेन इन्वेस्टर हु आर पुलिंग आउट ऑल द लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडियन मार्केट,
या
बिकॉज दैट इज द ओनली रीजन फॉर फॉल, और एंड दैट दे आर द ओनली पीपल, बिकॉज इंडियन रिटेल इन्वेस्टर अदरवाइज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर नॉट पुलिंग मच,
या
कितना, हाउ मच दे आर more invested in Indian market, what is their total investment in Indian market FII
well about 2 weeks ago.
One more question. Second question is about dollar and gold. See, gold prices have gone up because of buying by central banks of all around the world,
yeah,
realizing that dollar is not stable, but now scenario has changed. Dollar is becoming stronger and stronger. How do you see this all, iske piche puri story thode se bata sakte hai, acha hoga dollar gold and you know ka jo इकोसिस्टम बना हुआ है वर्ल्ड में।
FIIs में 2 हफ्ते पहले हमने इसका असेसमेंट किया था, मैंने निजी तौर पर 16% के करीब उनकी होल्डिंग भारतीय शेयर बाजार में है, और जिस तरीके से उन्होंने बेचा है पिछले 2 हफ्ते में, मुझे लगता है वो शायद 13-14% रह गई होगी या 14-15% के आसपास होगी, तो अभी उनका है यहां पर। और शंकर, इन्होंने बहुत कम दामों पर भी शेयर्स लिए हुए हैं, तो आई थिंक प्रॉफिट बुक करने का है, और जब युद्ध छिड़ता है तो अनिश्चितता का एक माहौल बन जाता है, और अनिश्चितता के माहौल में आप रिस्की एसेट से, शेयर मार्केट को थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, तो पैसा लोग निकालते हैं, तो उनको पैसे निकालने का हक है, जिसने पैसा लगाया है हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं। आपने पीछे डॉलर के पीछे क्या खेल है, डॉलर के पीछे कोई खेल नहीं है, डॉलर के पीछे खेल यही है कि 60-70% दुनिया में जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, तो इसलिए जब जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, और प्लस ये FIIs निकाल रहे हैं इसकी वजह से देने पड़ते हैं। गोल्ड का आपने पूछा, गोल्ड अभी तो थोड़ा दबाव में है क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर चला गया है क्रूड ऑयल की वजह से, और ऐसा माना जाता है बॉन्ड यील्ड्स जब अमेरिका में बढ़ती है, इस समय 4.4 आज सुबह का रेट था बॉन्ड यील्ड्स का, 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, तो उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि लोग गोल्ड से निकाल के फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अमेरिका में, मैं बताना चाहूंगा प्राची और अनुभव को भी, कि अमेरिका में 4-4.5% इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा बढ़िया इंटरेस्ट रेट माना जाता है, हमारे यहाँ तो सेविंग्स अकाउंट में लोग पूछते भी नहीं है, पर वहां पर बहुत अच्छा रेट होता है, तो वो ऐसा, पर मुझे लगता है टेम्पररी फेस है, एक शॉर्ट टर्म इवेंट है, घटना है, बुरी घटना है, इंग्लिश में कहते हैं दिस टू शैल पास।
लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल कमिंग इन फ्रॉम मुंबई, राहुल इज ऑनलाइन विद अस। राहुल वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
थैंक यू मैडम। शरद जी मेरा सवाल ये, मैं दिव्यांग हूँ और मुझे ये जानना है कि सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट तक पैसा हम भर सकते हैं, और क्या ज्यादा रकम भरने के बाद कुछ फॉर्म वगैरह कुछ भरना पड़ता है, ये वो उसके बारे में मुझे जानना था, कृपया बताइए।
देखिए राहुल, सेविंग्स अकाउंट में हम ऐसे इन्वेस्टमेंट रूल बताते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट अब तो 3-3.5% इंटरेस्ट देता है,
कम कई जगह
तो कहीं कहीं तो 2.5% भी हो गया, धीरे धीरे घट रहा है, तो सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखिए जितना आपको 1-2 महीने के लिए जरूरत होती है, जो आपकी लिक्विडिटी, उसके अलावा जैसे ही फालतू होता है तो वो आप फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर करिए। हमने एक आकलन किया था कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख 1 साल तक सेविंग्स अकाउंट में रखता है तो एक आलसी सी इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट अगर आप लें तो उसका 50-60 हज़ार रुपए साल का नुकसान हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम कहते हैं। तो राहुल आप थोड़ा पैसा रखिए एक दो महीने का, और एक स्वीप इन फैसिलिटी होती है आजकल, उसमें आप अपने बैंक को कहें तो जैसे ही सेविंग अकाउंट में एक लिमिट के ऊपर जाएगा वो आपका एफडी में ट्रांसफर कर देगा, तो आप वो स्वीप इन फैसिलिटी लीजिए क्योंकि सेविंग्स में आपका नुकसान होगा, आपको ज्यादा ब्याज उसमें नहीं मिलेगा। जी,
दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार कोहली जी।
नमस्कार जी।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे 31 मार्च की मेरी एफडी मैच्योर हो रही है
जी,
और हमने अपना H15 फॉर्म दे रखा है
जी
2025-26 का
जी,
तो हमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो हम जो अब एफडी मैच्योर हो जाएगी हमारी, तो इसमें हमारा टीडीएस कटने के कोई चांसेस है, या फिर हमारे को नया पीरियड हमारा 26-27 चलेगा वो तो हमें अगले अप्रैल में भरना पड़ेगा, तो ये थोड़ा क्लियरेंस चाहिए आपसे।
तो केशव जी, इसके लिए आप ये करिए कि आप अपने बैंक जाइए और उनको बोलिए कि मैंने 15H जमा किया है, और वो इसलिए होता है जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो मेरा ना काटा जाए, तो आप पूछिए बैंक से कि उन्होंने पिछले साल की आपकी एफडी में इफेक्ट दिया है कि नहीं दिया, और अगर वो कहें नहीं दिया है तो उनको बोलिए कि आपने जमा किया था इस तारीख को, और अगले साल के लिए भी आप उनसे पूछ लीजिए, अगले साल के लिए भी आप जमा कर दीजिए। तो ये तो आई थिंक इसके लिए आपको बैंक एक बार जाइए क्योंकि टीडीएस आपका खामखा कट गया, फिर आपको रिफंड लेना पड़ेगा।
जी, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश की यूरिया इकाइयां वर्तमान में 80% क्षमता से उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि खरीफ ऋतु में देश को 390 टन उर्वरक की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी बताया कि खाड़ी देशों के अलावा अन्य स्रोतों से उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल और मई कृषि के लिए कम उत्पादन वाले महीने होते हैं और आमतौर पर इस अवधि का उपयोग सरकार भंडार को बढ़ाने के लिए करती है। उन्होंने बताया कि इससे ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही महत्वपूर्ण आयात की व्यवस्था कर ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर अनेक उपाय किए हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे।
Let's move on to commodities. Global crude oil prices extended gains today amid escalating tensions in West Asia. Brent crude was trading almost 2.4% up at $115.24 per barrel, while the West Texas Intermediate crude was trading nearly 1.8% higher at $101.39 per barrel when reports last came in. And let's also take a look at the gold and silver prices. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading over 1.6% up at 1,49,740 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.2% higher at 2,33,380 rupees per kilogram a short while ago.
Multi commodity exchange mein April anubandh wala sona 1.7% se adhik badhkar 1,46,800 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, aur mai anubandh wali chandi bhi 2.2% badhkar 2,32,981 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. Sharad ji, ek quick comment.
क्रूड ऑयल की वजह से प्रेशर में है, और मुझे लग रहा है कि जो सट्टा होता है इसमें जो स्पेकुलेटर्स होते हैं कॉमेक्स में, उसकी वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है, पर जब तक क्रूड ऑयल की समस्या समाधान नहीं होती मुझे गोल्ड का बहुत क्लियर मूवमेंट नहीं दिखाई देता।
बहुत बहुत धन्यवाद शरद कार्यक्रम में आने और तमाम श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए।
थैंक यू सो मच।
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end last session of fiscal year 2026 with losses. Sensex declines over 1,600 points. Nifty closes below 22,350. India's industrial output rises to 5.2% in February this year. And global crude oil prices gain by around 2%. And that's it in this edition of Market Mantra. Do remember to join us tomorrow at the same time. Till then, from the entire team,
Namaskar. Market Mantra.